रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 15 फरवरी दिन सोमवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें शादाब हसन खान का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग से हुए बरी, दोषी ठहराने के लिए जरूरी 67 मत, हासिल नहीं कर पाई डेमोक्रेटिक पार्टी। म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना के दमन का मंडराया खतरा। स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र के स्थानीय असेंबली चुनाव में अलगाववादी दल बहुमत के करीब। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में शादाब हसन खान के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिकी कैपिटल हॉल में हुई हिंसा को भड़काने के आरोप पर अमेरिकी संसद में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चलाए गए महाभियोग में वह आरोपों से बरी हो गए हैं। यह उन पर दूसरी बार चलाया गया महाभियोग था। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी।
जैसा कि माना जा रहा था, अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग साबित करने के लिए जरूरी बहुमत नहीं जुटाया जा सकेगा, यही हुआ। शनिवार को सदन में हुई बहस के बाद जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग के लिए गिल्टी यानी दोषी और नॉट गिल्टी यानी निर्दोष पर मतदान हुआ, तो 57 वोट ट्रंप को दोषी मानते हुए डाले गए और 43 वोटों ने उन्हें निर्दोष माना। हालांकि ट्रंप को महाभियोग का दोषी मानने के समर्थन में 14 वोट ज्यादा पड़े, लेकिन अमेरिकी कानूनों के मुताबिक महाभियोग के लिए उनके खिलाफ 2/3 मतों की जरूरत थी, यानी कि 10 वोट और ज्यादा पड़ने थे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 10 और सांसद उनके खिलाफ मत डालते। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के 7 सांसदों ने ट्रंप को महाभियोग का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मत डाला था। अमेरिकी संसद की ओर से बरी हो जाने के बाद ट्रंप ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया गया है और किसी भी राष्ट्रपति को इससे पहले यह सब नहीं झेलना पड़ा। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हॉल में उत्पात मचाया और अमेरिकी लोकतंत्र को एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना पड़ा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह एक रिमाइंडर है कि लोकतंत्र एक नाजुक चीज है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटॉल में हुए दंगों के लगाए गए आरोप पर अब भी कोई विवाद नहीं है। इधर सीनेट की ओर से ट्रंप को महाभियोग से बरी किए जाने के बाद फिर संकेत दिखाई दिए हैं कि ट्रंप की अपनी पार्टी पर पकड़ अब भी बरकरार है। हालांकि उनकी पार्टी के 7 सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया था।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं शादाब हसन खान। अब रुख करते हैं अगली खबर का। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि वहां का सैन्य प्रशासन प्रदर्शनकारियों के दमन की तैयारी में है। म्यांमार के कई शहरों की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखी हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रात 1 बजे के बाद से देश में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। सेना की इस तैयारी को 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद देश में हो रहे विरोध को खत्म करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। देश के उत्तर में बसे काचिन में लगातार 9 दिनों से सेना के तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने म्यांमार की सेना पर लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान करने का आरोप लगाया है। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर टॉम एंड्रयूज ने कहा है कि सेना के जनरल हताशा के संकेत दे रहे हैं और इसके लिए उनके जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं हाल के दिनों में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा समेत 11 देशों ने सुरक्षा बलों से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग न करने की अपील की है। इधर भारत में दिल्ली की एक अदालत ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिशा रवि पर किसान आंदोलन से जुड़े उस टूल किट को एडिट करने का आरोप है जिसे मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने भी साझा किया था। पुलिस का आरोप है कि यह टूल किट भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। पुलिस ने दिशा रवि के लैपटॉप और मोबाइल फोन को भी सीज कर दिया है। भारत में चल रहे व्यापक किसान आंदोलनों के बीच दिल्ली पुलिस समेत सरकार समर्थक कई संगठन और लोग इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक बता रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि विदेशी ताकतों की ओर से इस आंदोलन को साजिशन समर्थन दिया जा रहा है। बीते दिनों रिहाना, ग्रेटा थुनबर्ग और मियां खलीफा जैसे दुनिया भर की कई मशहूर हस्तियों ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। हालांकि दिशा रवि को उनके वकील की गैर मौजूदगी में जिस तरह कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की हिरासत में भेजा गया, कानून के कई जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। दिशा रवि पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर्स के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अब अगली खबर। स्पेन के अलगाववादी इलाके कैटालोनिया में स्थानीय संसद के लिए हो रहे चुनाव में स्पेन से अलग होने की चाह रखने वाली पार्टियां सामूहिक रूप से बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ती दिख रही हैं। मतदान समाप्त होने के बाद कराए गए एक ओपिनियन पोल में यह सामने आया है। 3 वर्ष पहले स्पेन से अलग होने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद कैटालोनिया में पहली बार मतदान कराए जा रहे हैं। इसे इस क्षेत्र के स्पेन से आज़ादी हासिल करने के आंदोलन की ताकत परखने के मानदंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 135 सीटों वाली असेंबली में आज़ादी चाहने वाले 2 मुख्य प्रतिद्वंद्वी दलों में से वामपंथी रिपब्लिकन लेफ्ट ऑफ कैटालोनिया को 36 से 38 जबकि सेंटर राइट वाली टुगेदर फॉर कैटालोनिया को 30 से 33 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं फार लेफ्ट पार्टी पॉपुलर यूनिटी कैंडिडेंसी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ अलगाव का विरोध करने वाली लेकिन बातचीत की पक्षधर सोशलिस्ट पार्टी को दूसरी पार्टियों से अधिक मत मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में वह वामपंथी रिपब्लिकन लेफ्ट ऑफ कैटालोनिया से काफ़ी पीछे है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने रविवार को बताया कि कुर्दिश चरमपंथियों द्वारा अपहरण किए गए 13 तुर्की नागरिकों के शव उत्तरी इराक में बरामद हुए हैं। रक्षा मंत्री हुरूसी अकर ने बताया कि 12 लोगों के सिर में गोली मारी गई है जबकि एक व्यक्ति के कंधे पर गोली लगने का जख्म है। सभी शव तुर्की की सीमा पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK के खिलाफ 10 फरवरी को चलाए गए अभियान के दौरान गारा क्षेत्र से बरामद हुए। अकर ने बताया कि ऑपरेशन क्लॉ ईगल 2 में PKK 3 वरिष्ठ सदस्यों सहित 48 आतंकवादी मारे गए हैं जबकि 2 चरमपंथी पकड़े गए हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यासर गुलेर ने बताया कि अभियान 75 किलोमीटर लंबे और 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में चलाया गया। यह हाल में PKK के खिलाफ सबसे विस्तृत क्षेत्र में चलाया गया अभियान है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में 5 साल के बाद इबोला वायरस ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गिनी ने रविवार को 4 लोगों की इस बीमारी से मौत के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया है। दरअसल वर्ष 2016 के बाद पहली बार है जब गिनी में इबोला से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि वर्ष 2013 में इबोला ने खतरनाक महामारी के रूप में दस्तक दी थी और 2016 तक यह कई देशों में फैल गई। इस वायरस से तकरीबन 11,300 लोगों की मौत हो गई थी। गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इबोला से 4 लोगों की मौत का मामला नजेरे कोरे इलाके का है। जान गंवाने वालों में एक नर्स भी शामिल है जो जनवरी के आखिर में बीमार पड़ी है। अब रुख करते हैं लैटिन अमेरिका का। इक्वाडोर में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर गिनती कराई जाएगी। ऐसा इसलिए कि दूसरे चरण के मतदान में आंद्रे अराउस के सामने दूसरा उम्मीदवार कौन होगा यह पहले दौर के मतदान में साफ नहीं हो पाया है। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए दक्षिणपंथी गुइलेर्मो लासो और याकूब पेरिस के बीच कांटे की टक्कर है। इन दोनों ने ही देश के चुनाव कमीशन से दोबारा मतगणना की मांग की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दोबारा गिनती के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने की अपील की है। इन दोनों में से जो भी दूसरे स्थान पर होगा वह अप्रैल में होने वाले दूसरे दौर के मतदान में आंद्रे अराउस को चुनौती देगा। अब चलते चलते एक खबर पर नज़र। अमेरिका और मिस्र के पुरातत्वविदों को खुदाई में बियर की एक पुरानी फैक्ट्री मिली है। यह प्राचीन मिस्र के सबसे प्रमुख पुरातत्व स्थलों में शुमार एक जगह पर मिली सबसे पुरानी बियर फैक्ट्री हो सकती है। यह जानकारी एक शीर्ष पुरातत्व अधिकारी ने दी। प्राचीन वस्तुओं की सर्वोच्च परिषद के महासचिव मुस्तफ़ा वजीरी ने कहा कि यह फैक्ट्री नील नदी के पश्चिम में प्राचीन कब्रिस्तान एबिडोस में मिली है, जो दक्षिणी काहिरा से 450 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री किंग नारमीर के क्षेत्र में स्थित है, जिन्हें पहले वंशकाल यानी 3150 ईसा पूर्व से 2613 ईसा पूर्व की शुरुआत में प्राचीन मिस्र के एकीकरण के लिए जाना जाता है। पुरातत्वविदों को 8 इकाइयां मिली हैं। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए शादाब को दीजिए इजाज़त, करफील होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।